ओम शांति।
ओम शांति।
तो कहते हैं कि मन की स्पीड जो है वो लाइट और साउंड से भी बहुत फास्ट है ना। तो मन ये जो भागता है हमारा, तो आज का टॉपिक दिया है कि मन को शक्तिशाली कैसे बनाए। तो मन के दो भाग हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और एक है अवचेतन मन। तो इसके हमने कुछ 10 पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवचेतन मन पर, जो कि है सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं कि 10% शक्ति है वो कॉन्शियस माइंड में होती है, और 90% जो शक्ति है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। तो उसको कंपेयर करते हैं, जैसे कि वो बर्फ की जो चट्टान होती है ना, आइसबर्ग, ऊपर थोड़ा सा दिखता है लेकिन नीचे उससे भी बहुत गहराई होती है उसकी, बर्फ की जो चट्टान तैरती हुई दिखती है ओशंस में। तो अवचेतन मन भी उसी प्रकार 90% है, जो कि हमको पता नहीं लेकिन उसमें बहुत शक्तियाँ होती हैं। तो इस अवचेतन मन को, इस मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं? तो पूरे दिन भर क्या होता है, जैसे तीन प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन की, मन के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है। कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, उसको अगर कोई चीज़ सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर वो कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर वो बैरियर हटा के उस इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस माइंड में जाने देता है। तो दिन भर हमारा कॉन्शियस माइंड हमको सुन रहा होता है, और वो डिसाइड करता है कि क्या इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी। तो पहली बात है कि कॉन्शियस माइंड को जब हम सेटिस्फाइड करेंगे, तब वो इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई बच्चे को कहा जाए, अगर उसका टीचर उसको कहे कि तुमको मैथ्स तो आएगा ही नहीं ज़िंदगी भर, तो अब उसका कॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो उस पर मतलब कितना भी काम करेगा मैथ्स पर, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होगा कि वो मैथ्स में फेल हो जाएगा। सेकेंड बात है कि अगर कोई चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं, बार बार जिस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, तो वो बात अंदर जाती है। कॉन्शियस माइंड उसको 1, 2, 3 बार निगेट करता है, लेकिन फिर वो उसको अंदर जाने देता है। जैसे हम देखते हैं ना अपने आप को, कोई पास्ट की बात भी हमको याद आ जाती है, तो हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, अपने माइंड में दोहराते हैं। या कोई बात हो जाती है तो हम जाके 2, 3, 4 लोगों को बोलते हैं वो बात। तो बार बार दोहराने से वो बात सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और तीसरी है हिप्नोसिस, जिसमें कॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, एक इनवर्ड अवेयरनेस में लेके जाते हैं, जिसमें कॉन्शियस माइंड जो है वो ट्रांस में जाता है, ट्रांस में लेके जाते हैं, और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे वो सीधे हमारे अवचेतन मन में जाती है। तो कहते हैं कि अगर एक घर है, तो वो घर सबकॉन्शियस माइंड है, और जो पहरेदार है वो कॉन्शियस माइंड है। तो जैसे कि अगर पहरेदार को समझा दिया जाए कि हमको अंदर जाना है, रिक्वेस्ट किया जाए, तो वो हमको अंदर जाने देगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है पहरेदार को बार बार रिक्वेस्ट करे, बार बार हिट करे ना, जैसे कि कॉन्शियस माइंड को अगर कोई बात, इन्फॉर्मेशन बार बार हिट की करी जाती है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसको जाने देता है। और तीसरी बात है कि अगर पहरेदार का ध्यान कहीं और चला जाए, मतलब हिप्नोसिस, तो वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो अब इस मन को शक्तिशाली बनाए कैसे, तो तीन बातें हैं। तो पहली वही है कि कोई भी चीज़ को लॉजिकली अंडरस्टैंड करवाना है कॉन्शियस माइंड को। जैसे कि अगर हमको जीवन में सफलता चाहिए, तो फिर हम जो लोग बहुत परिस्थितियों से बाहर निकल के सफल हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पढ़े, तो हम हमारे कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई करा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन, तो वो मन में जाएगी। दूसरी बात, पॉजिटिव एफर्मेशंस, बार बार कोई चीज़ को दोहराना, बार बार कोई चीज़ को रिपीट करना। और तीसरी बात हिप्नोसिस। तो सेकेंड पॉइंट है मन को शक्तिशाली बनाने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव सजेशंस माइंड को देने हैं। उसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए, जैसे कि मैं ये हूँ, जैसे मैं सफल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसे नहीं कि मैं खुश होंगी या मैं सफल होंगी, है ना। तो ये सारी नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वो दिन भर हमको सुनता रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो बातों को कैच कर लेता है और वो अंदर जाने देता है. और सबकॉन्शियस माइंड एक बुद्धू जैसा ही है, जो कि वो समझता नहीं है कि ये बात सच है या झूठ है या गलत है, वो उस पर काम करना चालू कर देता है. फिर चाहे वो बात कैसी भी हो, फिर वो हमको वैसा बना के ही छोड़ता है. तो इसमें है ना, बताते हैं कि तीन चीज़ें हैं. एक तो अभी कैसे इसको ट्रेन करना है, कैसे अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को कैसे अंदर डालना है. तो सबसे पहली बात कि जो चीज़ हमको चाहिए हमारी लाइफ में, उसको लिख दो, उसको अपनी भाषा में लिख दो. तीसरा, अगर दूसरा अगर हो सके तो उसको हमारी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो. और तीसरा, उसको 3 बार दोहराओ, और 3 बार अलग अलग टोन में दोहराओ. जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसे कुछ अलग 3 टोन में अगर हम उसको रिवाइज करें, तो वो ब्रेन के अलग अलग पॉइंट्स में इतनी डीपली डिपॉजिट हो जाती है जैसे कि, तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना चालू करता है. तो बाबा ने हमको क्या बताया ज्ञान में, स्वमान. ये जो स्वमान है ना, ये जैसे कि पॉजिटिव एफर्मेशन है हमारे लाइफ में. जैसे हमेशा कहते हैं ना कि मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजयी रतन हूँ. तो स्वमान क्या है? बाबा ने कहा है कि स्वयं ही स्वयं को मान देना ही स्वमान है. और जो बाप के टाइटल है वही आपके स्वमान है. तो स्वमान, जब स्वमान में रहना है तो उस आत्मा को निर्माणचित होना होगा, है ना. और जैसे कि अगर किसी को मान की जिज्ञासा है तो स्वमान का कोर्स पूरा नहीं होगा, बाबा ने कहा. जब मान की जिज्ञासा पूरी हो जाएगी तब मान स्वमान में स्थित होना स्वतः और सहज हो जाएगा. जैसे मान अलग अलग प्रकार के हैं, पद का, पोजीशन का, गुणों का. तो ये सब मान जब हट जाएंगे तब आत्मा स्वमान में स्थित होती है. तो जैसे बाबा ने कहा है कि स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ, है ना. कहते हैं अगर कोई लौकिक में भी किसी को सीट मिल जाती है तो उसको कितना नशा और प्राप्ति होती है, वैसे ही आप स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो उस नशे और प्राप्ति में रहेंगे. हमने भी देखा है ना, जैसे यज्ञ में अगर, जैसे एक होता है मेडिकल कंसल्टेशन, एक होता है स्पिरिचुअल कंसल्टेशन. तो जब स्पिरिचुअल कंसल्टेशन के लिए कोई आता है तो उसको हमेशा स्वमान का अभ्यास दिया जाता है कि ये 108 बार इस स्वमान को करो, इसको दिन भर रिपीट करो, इसको दिन भर अभ्यास करो. क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें मन को शक्तिशाली बनाती है. तीसरी पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड. हमारा क्या एटीट्यूड है हमारी लाइफ की ओर? तो इसमें जैसे कि अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में अशोक गाबा जी एडमिट है, और उनको स्ट्रोक हो गया था, पैरालिसिस का अटैक हुआ था, और कुछ महीनों के बाद उनको वापस स्ट्रोक हो गया. और इस बार जब स्ट्रोक हुआ तो उनकी आवाज़ ही चली गई उसमें. तो कोई भाई ऐसे ही जा रहे थे तो उन्होंने कहा कैसे हो आप, क्योंकि लगता है ना किसी को 2 बार स्ट्रोक होगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा. लेकिन यह हाइट ऑफ पॉजिटिविटी हम कहेंगे. उनका उत्तर कैसा था कि बाबा ने जो मुरली चलाई ना वो मेरे पे चलाई. मतलब वो मौन हो गए ना, उनकी आवाज़ चली गई है. ये तो हाइट ऑफ पॉजिटिविटी हुआ ना कि हाँ लिटिल बिट ना, लेकिन वो पूरा तरह से बात नहीं कर पा रहे. तो उनका बात यह है कि बाबा ने जो मुरली चलाई देखो मेरे पे चलाई, है ना. मौन की बात की, मन के मौन की बात की, तो मेरा तो स्वतः ही हो गया ये सब. तो ये हाइट ऑफ पॉजिटिविटी. ऐसे ही ब्रह्मा बाबा हमको पॉजिटिविटी के बारे में कितना बताते थे. जैसे कि बाबा की जीवन कहानी में एक चैप्टर है जिसमें बाबा ने हर चीज़ों से गुणों को उठाने के लिए कहा है. जैसे दत्तात्रेय का एग्जाम्पल देते हैं ना कि उसने 24 वस्तुओं से गुण उठाए अपने जीवन में, और ज्ञान को बढ़ाया, चित्त को शांत किया, उपराम अवस्था को पाया. वैसे ही बाबा ने हमारी मनोवृत्ति ऐसी कर दी है कि अभी हमें हर चीज़ में गुण ही दिखाई दे. तो उस चैप्टर में अलग अलग पक्षु, अलग अलग जीव प्राणी को लेते हुए बाबा ने कैसे गुण उठाए हैं. तो उसमें एक एग्जाम्पल हम बताएंगे, समुद्र को बाबा ने कहा कि कैसे गंभीरता का गुण उठा उसमें. जैसे उसमें गोताखोर होता है तो वो कैसे डीप जाके रत्न लेके आता है, वैसे ही आप बच्चों को भी ज्ञान की गहराई में जाके ज्ञान रत्न बाहर लाने हैं. फिर बाबा ने उसमें शालिग्रामों की चर्चा की है कि देखो छोटा सा पत्थर, उस पर लहरें घिस घिस कर वो कैसे पूजनीय हो गया है. तो ऐसी कुछ पॉजिटिव बातें हैं. ऐसे ही बाबा दादियों को कैसे तैयार करते थे, कैसे उनका मनोबल बढ़ाते थे। तो एक बार मनोरिंद्रा दादी उसमें अनुभव लिखते हैं कि जब वो अपने घर, जैसे कि बहुत साल हो गए थे, तो शिव बाबा का संदेश आया ब्रह्मा बाबा को कि अब इन बच्चों को इनके लौकिक घर में भेजना है, अभी ये परिपक्व हो चुके हैं। तो बाबा ने उनको 6 बातें बताई, जैसे कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि उनको कैसे जाना है वहाँ पर। तो बाबा ने कहा कि जब तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हारे लौकिक संबंधियों का मोह नहीं होना चाहिए तुम में, तुम उनको अपनी बहन या बेटी ऐसी नज़र नहीं आनी चाहिए, तुम उनको एक शक्ति रूप देखनी चाहिए। दूसरा बाबा ने कहा कि उनके मुँह में, या मतलब उनका मुँह इतना ना हो कि वो तुम्हारे गले लग जाए। तीसरी बात बाबा ने उनको बताई कि तुमको वहाँ का अन्न भी स्वीकार नहीं करना है, तुम सिर्फ दूध और फल ही खा सकती हो, वहाँ का शुद्ध भोजन तुम्हारे लिए सिर्फ यही होगा। चौथी बात बाबा ने बताई कि उनका धन भी तुम किसी भी अपनी लौकिक चीज़ों पर खर्चा नहीं कर सकती। पांचवी बात बाबा ने बताई कि तुमको उनको अपना ज्ञान सुनाना है, सबको ज्ञान से भरपूर करना है। और छठी बात बताई थी कि इतना ज्ञान से वो प्रभावित हो जाए कि वो तुम्हारे साथ वापस आए संस्था में। तो ऐसे बाबा कैसे मनोबल बढ़ाते थे। तो इस पॉजिटिव एफर्मेशन में भी हमारे पास कोई नेगेटिव वर्ड ना हो, कि जैसे कि मैं बीमार नहीं हूँ। अब ये नहीं वर्ड जो है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड वही उठा लेगा। तो नहीं होना चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये है पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसमें और बात करते हैं चौथी पॉइंट, जैसे कि विजुअलाइजेशन। जो भी चीज़ हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम उसको बार बार देखें, हम बार बार उसको विजुलाइज करें। जैसे वो एग्जांपल बताते ना, जो जॉर्ज वॉशिंगटन, वो कैसे घंटी बजाता था और कहता था कि मैं जॉर्ज वॉशिंगटन, आई विल बी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। तो वो बन गया क्योंकि उसने बार बार उस चीज़ को विजुलाइज की। ऐसे ही हम देखते हैं जब बच्चे होते हैं, उनको माता पिता कुछ खेलने के लिए ला के देते हैं, किसी को किचन सेट ला के देते, तो किसी को डॉक्टर सेट ला के देते। अब जो बच्चे को ये सारी चीज़ें बचपन से ला के दी जाती है, तो वो उसी में खेलता है, उसी को विजुलाइज करता है। किसी को कार ला के दिए जाती है, तो वो जीवन में जाके ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनते हैं। किसी को किचन सेट ला के देंगे तो वो जाके हाउस वाइफ ही बनेगी आगे। तो ऐसी कोई चीज़ जो हम बार बार विजुलाइज करते, वो हम कैसे बनते आगे जाके। फिर पांचवी पॉइंट, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्न। तो जैसा अन्न, हमको तो ये सब कुछ दे दिया था। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण भोजन बना रहा है और वो भोजन हम स्वीकार करें तो वो सात्विक भोजन है, नहीं। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक यानी कि जो बाबा की एनर्जी से चार्ज्ड हो, जो हाई एलिवेटेड फूड हो, उसको हम सात्विक भोजन बोलेंगे। जैसे इसमें कोई भी हमारा भोजन 3 प्योरिफिकेशन की स्टेज से जाता है। सबसे पहले तो जब भोजन बनाया जाता है तो किस वृत्ति से बनाया जा रहा है, किस संकल्पों से हम उस भोजन को तैयार कर रहे हैं। सेकंड, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर हम भोग की थाली में ले लेते हैं और वो भोग की थाली बाबा को स्वीकार की जाती है, बाबा के प्योरिटी के वाइब्रेशंस उसमें भरे जाते हैं। और थर्ड, जब वो हमारी प्लेट में आता है तब हम उसको अपने प्योरिटी के वाइब्रेशंस देते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। और जब हम ऐसा भोजन स्वीकार करते हैं, इसको कहते हैं हम सात्विक भोजन। हम इस अन्न का पॉइंट क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक हमने एक बीके पेशेंट को देखा। उनको कोलेस्ट्रॉल हाई था, उनको हार्ट की बीमारी थी, परंतु वो मेडिसिन नहीं ले रहे, लेकिन कहते हैं कि मैं गार्लिक लेता हूँ और कुछ और भी उन्होंने अपना कॉम्पोजिशन मिक्सचर बताया कि मैं ये लेता हूँ, इससे मेरा कोलेस्ट्रॉल कम है ना, अच्छा रहता है। तो देखो, ब्राह्मण होके भी अभी अगर हम अनियन गार्लिक, जो बाबा ने कहा है कि ये जो फूड है ये वासनाओं को जागृत करता है, तो ये फूड हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी भी लोगों के माइंड में ये बातें बैठी है ब्राह्मण होके कि जो गार्लिक फूड है वो है ना हार्ट की बीमारी के लिए अच्छा है। लंदन में एक स्टडी की गई थी कुछ साल पहले, उसमें बताया था, कंपैरिजन था गार्लिक फूड खाने से और एक्सरसाइज करने से। तो बताया गया कि एक्सरसाइज करने से 4 गुना अच्छे फायदे हैं एज़ कम्पेयर टू गार्लिक। तो हम ये क्यों खाएं। जैसे प्याज के लिए भी बोलते हैं ना, जब प्याज काटते हैं तो कैसे आंखों से पानी गिरता है, तो उसमें एक एसिड होता है, तो जैसे आंखों को वो इरिटेंट करता है, वैसे अंदर जाके वो ऐसी नर्व्स को इरिटेंट करता है कि आत्मा में जो इमोशंस होते हैं ना, वो इरिटेबिलिटी एंगर के इमोशंस होते हैं, और फिर वही पेन वाले वाइब्रेशंस हम स्वीकार करते खाते हैं। तो इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन। बूढ़ी दादी के बारे में हम सब जानते हैं कि दादी जी जब भी कोई आता था भंडारे में तो कभी भी दादी नहीं नहीं बोलते थे किसी को। एक बार बोली दादी, बोली दादी। तो एक बार सूरज
तो थोड़ा सा दोबारा नहीं देगी
बोली दादी। तो एक बार
बूढ़ी दादी रेल मंडल।
तो एक बार सूरज भाई जी बता रहे थे कि है ना, एक माता बहुत ना चिल्लाती थी, आवाज करती थी, परंतु वो जब भंडारे में आई उसने कहा मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, तो दादी ने कहा आओ आओ बच्ची आओ, अब दादी ने तुरंत बना के दिया। तो सूरज भाई ने कहा कि क्यों दादी आपने उनको दिया, वो तो कैसे चिल्लाती रहती माता। तो दादी ने कहा अगर हम इन बच्चों को नहीं देंगे ना तो फिर ये बाजार में जाएंगे खाने के लिए, है ना। तो कैसे दादियाँ ध्यान देती थी, कैसे बाबा और दादियों ने पालना दी, क्यों, क्योंकि पता है कि जैसा अन्न वैसा मन। फिर जैसे कि रूहानी एक्सरसाइजेस, अभी किस चीज़ को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, तो रूहानी ड्रिल्स जो है हमारी, हमारा जो योग है, ये सब मन को शक्तिशाली बनाता है। जैसे रूहानी एक्सरसाइजेस है, ऐसे माइंड की भी कोई एक्सरसाइजेस होती है जिसको प्राणायाम कहते हैं। तो जो प्राणायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं ना, उसमें जैसे कि मन शक्तिशाली होता है, उसमें एग्जांपल बताते हैं कि जैसे कछुआ होता है वो एक मिनट में एक या दो ही सांस लेता है, इसलिए वो लंबा जीता है, और जो कुत्ता होता है वो 40 से 50 बार एक मिनट में सांस लेता है तो वो कम जीता है। ऐसे ही कुछ अलग अलग यूट्यूब्स पे माइंड पावर की एक्सरसाइजेस दी है, तो वो कर सकते हैं। और जैसे कि हमेशा बताते बाबा ने कैसे कहा ना इस मुरली में, मन का मौन, तो जो मन मौन है वही मन शक्तिशाली बन सकता है। बाबा ने कभी कहा है कि जो व्यर्थ है ना, जो व्यर्थ है वो बाह्य मुक्ता है, और जो समर्थ है वो अंतर मुक्ता है। तो जितना हम मन का मौन रखेंगे उतना हमारा मन शक्तिशाली बनता जाएगा। फिर है कि मनन चिंतन, मनन चिंतन से मन शक्तिशाली बनेगा। उस दिन का वरदान जैसे था कि जैसे ज्ञान का सिमरन करते रहो तो हर्षित रहेंगे, ब्राह्मणों का असली संस्कार ही है हर्षित रहना। तो जैसे कि ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे, ज्ञान की टिकलू टिकलू होती रहे, बाबा ने कहा ज्ञान कंठ कर लो। तो जितना हम ज्ञान में रमण करते रहेंगे उतना मन शक्तिशाली होगा, तो दूसरी बातों में जाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा जैसे कि। और फिर जैसे कि ये स्वमान है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान इट्सेल्फ बहुत आत्मा को शक्ति दे देता है या मन को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए जितना हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ये मन को शक्तिशाली बनाएगा। और 10वीं 11वीं पॉइंट है खुशी। खुशी बाबा ने कहा है खुशी ही मन की खुराक है, 92 वे मुरली है उसमें बाबा ने कहा है खुशी ही मन की खुराक है, ये आपको कमज़ोर नहीं बनने देगी, ये शक्तिशाली बनाती है। तो जैसे कि मन जो शक्तिशाली मन है उसको अगर शक्ति चाहिए तो खुश होना है, मन खुश है तो शक्तिशाली है। और लास्ट पॉइंट है जैसे कि जो मन में कंट्रोलिंग पावर है, जो मन में एकाग्रता है, वो मन शक्तिशाली होगा। तो कंट्रोलिंग पावर जितनी रहेंगी, जितना हमको अपने पे कंट्रोल रहेगा, हमारी एनर्जी कहीं वेस्ट ना हो, तो मन शक्तिशाली होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मन को शक्तिशाली बनाने की। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा अवचेतन मन है, उस पर पूरा काम करना है। अगर उस पर पूरा काम कर दिया ना तो फिर मन शक्तिशाली बन जाएगा। सबसे पहली पॉइंट अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग। सेकंड पॉइंट पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स हम अपने आप को कैसे दे, जिस उसमें स्वमान। थर्ड पॉइंट पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी वृत्ति कैसी हो। चौथी पॉइंट विजुअलाइजेशन, जो चीज़ हमको चाहिए उसको हम बार बार देखें, उसमें पिक्चर भरे, उसके बारे में बार बार सोचे। पांचवी पॉइंट जैसा अन्न वैसा मन। सिक्स्थ पॉइंट विजुअलाइज एक्सरसाइजेस, रूहानी ड्रिल्स। सातवीं पॉइंट माइंड की ड्रिल्स, और फिर उसके बाद मनन मौन की शक्ति आठवीं पॉइंट, फिर नाइन्थ मनन शक्ति, फिर दसवीं पॉइंट मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये स्वमान के ऊपर अभ्यास, फिर खुशी ग्यारहवीं पॉइंट खुशी जो है वो मन को शक्तिशाली, और लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग पावर एकाग्रता। तो जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं ना उसको बार बार देखे, उसको बार बार सोचे कि ये अच्छा ही होगा है ना, और यही है उसको, उसके बारे में जरा भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर बैठ के बोलना, इस जब हमारी क्लास ये पहले चालू हुई थी तो हम पहले बहुत डरते थे यहाँ बैठने के लिए, तो पहले हम सोचते थे कि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं इनके सामने, मैं अभी सुनूं तो आप लोग सुनते ही नहीं
डराने वाले हो गए अभी,
पहले सोचते थे कि देखो पहले सोचते थे क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, फिर है ना वो एक कहानी है ना राजा भोज की सिंहासन बत्तीसी, तो हमने सोचा इसके नीचे सिंहासन बत्तीसी है और यही हमको बुलवाता है इधर बैठे बैठे, तो इसलिए डरने की बात नहीं, उसको बार बार हम विजुलाइज करते कि नहीं क्लास अच्छी होगी, हमको भी आता है बोलने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, सोफा चेंज कर दो उसके नीचे है सिंहासन बत्तीसी तो ये है मन की शक्ति को बढ़ाने के पॉइंट्स। और किसी को कुछ ऐड करना है?
मैं आगे कुछ